મહાબંધ પુસ્તક પાંચમી લેક્ચર નંબર 15 ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય ઓમ શુદ્ધાત્મને નમઃ નમો અરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયર્યાણં નમો ઔવચ્છાયાણં નમો લોયે સૌવસાહુણં ભૂતબલિ પ્રણીતં તં બંધતત્વપ્રકાશકં મહાધવલ વિખ્યાતમ મહાબંધમ નમામ્યહમ. આચાર્ય શ્રી ભૂતબલિ ભટ્ટારક પ્રણીત એવ મહાબંધ નામ કા સિદ્ધાંત શાસ્ત્ર હૈ જો ષટખંડાગમ કા 6 નંબર કા ખંડ હૈ. ઇસમેં તૃતીય અનુભાગ બંધ અધિકાર કી બાત હમ ચલ રહી હૈ ઓર પાંચમી પુસ્તક કે પૃષ્ઠ સંખ્યા 57 પર હમ આગે 57 ઉત્તર પ્રકૃતિઓ કે બંધ સન્નિકર્ષ મેં અનુભાગ બંધ સન્નિકર્ષ મેં હમ જગન્ય અનુભાગ કા સન્નિકર્ષ દેખ રહે હૈ ઓર વો ભી માર્ગણાઓ મેં. અબ હમારી માર્ગણા ચલેગી ઔદારિક મિશ્ર કાયોગી કી. યહાં સે પઢતે હૈ ઔદારિક મિશ્ર કાયોગી જીવો મેં સાત કર્મો કા ભંગ સામાન્ય દેવો કે સમાન હૈ. અભી હમકો યે નક્કી કરના પઢને કે પહેલે કે ઔદારિક મિશ્ર કાયોગ મેં જઘન્ય અનુભાગ બંધ પ્રશસ્ત હો યા અપ્રશસ્ત કા કોણ કરેગા. તો જે નિવૃત્તિ અપર્યાપ્ત હૈ નેક્સ્ટ સમય મેં વો શરીર પર્યાપ્તિ પૂર્ણ કરને વાલા હૈ એને ઔદારિક મિશ્ર કા વો અંતિમ સમય હૈ સંગી પંચેન્દ્રિય તો વહા પર મિથ્યા દૃષ્ટિ હૈ. અબ જો પ્રશસ્ત પ્રકૃતિઓ કા સમય દૃષ્ટિ કરેગા હા પરંતુ વો તો હા અપ્રશસ્ત કા જઘન્ય કરેગા ઓર પ્રશસ્ત કા સર્વ સંકલેશ વાળા મિથ્યા દૃષ્ટિ કરેગા. મેને ઉત્કૃષ્ટ કી બાત ઉલટી બતાઈ. તો કહેતે ઔદારિક મિશ્ર કાયોગી જીવો મેં સાત કર્મો કા ભંગ સામાન્ય દેવો કે સમાન હૈ. યહાં ગુણસ્થાન એક હૈ દો હૈ ઓર ચાર હૈ યાની ચાર ગુણસ્થાન તક હૈ તો સામાન્ય દેવો કે સમાન બતા દિયા. વૈસે દેવો મેં કોઈ ઔદારિક મિશ્ર નહીં હોતા હૈ. તો તિર્યંચ ગતિ ઓર તિર્યંચ ગત્યાનુપૂર્વી કા ભંગ ઓક કે સમાન હૈ. ક્યોંકિ તિર્યંચ ગતિ ગત્યાનુપૂર્વી કા તો જગન્ય અનુભાગ બંધ અગ્નિ કાયિક વાયુ કાયિક નિવૃત્તિ અપર્યાપ્ત વાલે સર્વ વિશુદ્ધ મેં કરેંગે. એક દો ઓર ચાર એક દો ઓર ચાર તો વહા મોહનીય કા ભી સમજના ના. ઔદારિક મિશ્ર મેં તો કોઈ સમ્યક તો પ્રાપ્ત કરતા નહીં હૈ. તો વહા મિથ્યાત્વ અનંતાનુબંધી વગેરે કા જો જગન્ય અનુભાગ બંધ હૈ વો કિસકે હોગા. હા અંતિમ સમય મેં વહા ઉસકા જગન્ય હોગા. તો ઉસકા જો એક કા જગન્ય હૈ મિથ્યાત્વ કે સાથ અનંતાનુબંધી લેના હૈ જગન્ય અજગન્ય દોનો હોગા. ઓર મિથ્યાત્વ કે સાથ જઘન્ય લેના હૈ ના. હા મિથ્યાત્વ કા જઘન્ય કબ હૈ અંતિમ સમય મેં વહા પર વહા ઉસકી વિશુદ્ધિ જ્યાદા હૈ ના. તો પુરુષ વેદ હાસ્ય રતિ હોગા. નિકાલો દેવો કી વાત મોહની કી. વો સ્વામી જુદા હૈ પણ કથન વૈસા હી હોગા. વહા દેવો મેં તો નારકિંગ કે સમાન બતા દિયા. નારકે મેં કહેંગે ઓકે સમાન. હા યહાં 38 में क्या है, जगन्नाथ की बात है क्या, देव का ना, वो नारके के समान कह दिया, नारके 38 पेज पर था। अब देवों के से इसलिए कहा कि वहां तो एक इंद्रिय जाति वगैरह भी बंद है कि इसलिए देवों के समान बताया। देखो हम मोहनी की बात देखनी है हमको, हाँ तो मोहनी में पेज नंबर 38 निकालना। देखो दर्शनावरण की बात है, निद्रा निद्रा का जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, यहाँ तो कोई सम्यक तो सन्मुख नहीं परंतु अति विशुद्ध वाला लेना, तो स्थान वृद्धि वगैरह वगैरह क्या बंद करेगा, वो कैसा करेगा, जघन्य भी और अजघन्य भी। अब निद्रा का जघन्य अनुभाग बंद करने वाला, अब औदारिक मिश्र में ये कौन होगा, तो सम्यक दृष्टि होगा, हाँ सर्व विशुद्ध सम्यक दृष्टि, तो पांच दर्शनावरण का नियम से बंद करेगा वो, जघन्य भी और अजघन्य भी, इस तरह से लेना है। और निद्रा निद्रा के साथ जब निद्रा प्रचला और अन्य जो छह बंधेगी तो अनंत गुना बंधेगी उसके साथ, ख्याल में तीन बात, उसका अपना जघन्य सम्यक दृष्टि के है, निद्रा निद्रा के साथ वो अनंत गुना बनती थी। अब उसके बाद ये दर्शनावरण की बात होगी। अब मिथ्यात्व का 39 पेज, मिथ्यात्व का जघन्य कर रहा है तो उसके साथ अनंतानुबंधी चार को लेना नियम से, जघन्य भी अनजघन्य भी। अब जो पांच कषाय और नौ पांच, बारह कषाय और पांच नौ कषाय का नियम से बंद करता है परंतु अनंत गुना अधिक होता है, यानी जहां मिथ्यात्व का जघन्य है वह हास्य रति भय जुगुप्सा ही बंधेगी, पर उसका जघन्य अपना जघन्य किसको है, सम्यक दृष्टि को, यहां वो अनंत गुना बंधेगी। ऐसे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का जघन्य ये सम्यक दृष्टि करेगा औदारिक मिश्र में, तो वह अन्य ग्यारह कषाय पांच नौ कषाय का नियम से बंधे वो जघन्य भी होगा अजघन्य भी होगा, क्योंकि इसके लिए यही है ना, इसके ऊपर के और कोई बात नहीं है, यही गुणस्थान है जो अंतिम। अब स्त्रीवेद का जघन्य करने वाला जीव, तो स्त्रीवेद का हाँ तो तत्प्रायज्ञ वाला होगा, तो मिथ्या तो सोलह कषाय भय जुगुप्सा का अनंत गुना अधिक करेगा, स्त्रीवेद बनता है तो अन्य वेद नहीं बंधेगा, वहां हास्य रति भी और अरति शोक भी कैसे बंधेगी, अनंत गुना अधिक बंधेगी, ऐसा ही नपुसक वेद के साथ होगा। अरति का जघन्य अनुभाग बंद करने वाला, यानी सम्यक दृष्टि तत्प्रायोग्य वाला होगा, क्योंकि सर्व विशुद्धि में हास्य रति का बंद करेगा, थोड़े कम विशुद्धि में अरति का जघन्य करेगा, वहां बारह कषाय पुरुष वेद भय जुगुप्सा सब बंधेगी पर वो अनंत गुना अधिक बंधेगी, क्योंकि उसका अपना जघन्य है वो सर्व विशुद्ध में होगा। इस तरह से यह हमने देख लिया। अब नाम कर्म की बात अब देखेंगे। तीर्यंज गति और तीर्यंज गत्यानुपूर्वी का भंग ओक के समान है, यानी तीर्यंज गति का जो जघन्य अनुभाग बंद कर रहे औदारिक मिश्र में कौन कर रहा है, तो अग्नि का एक वायु का एक निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था में, वो तो सर्व विशुद्ध वाला लेना, तो वहां सर्व विशुद्ध में क्या बांधेगा, पंचेंद्रिय जाति बांधेगा, जैसे नार ओग में तो नार की बांध रहा था और यहां तो अग्नि का एक वायु का एक बांधता है, हाँ तो यहाँ पंचेंद्रिय जाति के साथ तीरंज गति, यानी तीरंज गति के जघन्य के साथ पंचेंद्रिय जाति बंधेगी, यानी इसके साथ जो बंधने वाली जो पंचेंद्रिय जाति तेजस शरीर कर्म शरीर औदारिक शरीर वगैरह जो अंगोपांग ये सब प्रकृति बनती है वो सम्यक दृष्टि को उत्कृष्ट होगी, और जघन्य किसके होगी, संकलेश वाले को जघन्य होगी। और यहाँ कौन सा जीव है, वो सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि है ना, ये अग्नि का एक वायु का एक सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि है, तो ये अनंत गुना होगा ना, हाँ ये तो ध्रुवबंदी प्रश्न 29 निकालो। यहाँ लिखे रखा है हमने पेज 29, हाँ देखो नीचे से दूसरी लाइन तिरियंच, अभी औदारिक मिश्र में करने वाला स्वामी तो अग्नि का एक वायु का एक है, परंतु कथन यही होगा कि तिरियंच गति का मिला आपको नीचे से दूसरी लाइन, तिरियंच गति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव पंचेंद्रिय जाति, क्योंकि अति विशुद्ध है ना अभी, औदारिक शरीर तेजस शरीर कारमान शरीर समचतुर संस्थान औदारिक अंगोपान वज्रषभ नाराज सहनन प्रशस्त वर्ण चतुष्क अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, ये अप्रशस्त प्रकृतियां भी यहाँ अनंत गुणा बंधेगी, अगुरु लघु चतुष्क प्रशस्त विहाय गति त्रस चतुष्क स्थिरादि छह, ये सब प्रशस्त लेना और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है। तिरंज गत्यानुपूर्वी का तो जघन्य भी अजघन्य भी होगा, उद्योत का कैसा होगा अनंत गुणा, क्योंकि उद्योत का जघन्य संकलेश में होगा। हाँ, अब ये तिरंज गति की बात हमने ओक के समान देखी पेज नंबर 29 पर। अब सेकंड लाइन मनुष्य गति पांच जाति, ये अगर हम अग्नि का एक वायु का एक को छोड़ते हैं तो अन्य जीवों में तिरियंच गति का भी मध्यम परिणाम में जघन्य होगा। हा? तो मनुष्य गति का भी जघन्य मध्यम परिणाम में होगा। तो मनुष्य गति पांच जाति छह संस्थान छह सहनन मनुष्य गत्यानुपूर्वी दो विहाय गति त्रस स्थावर आदि चार युगल सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर आदेय और अनादेय की मुख्यता से सन्निकर्ष, जिस प्रकार इन प्रकृतियों की मुख्यता से पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्तकों के कहे आए उस प्रकार जानना चाहिए। अब ये देखना ये सब मध्यम परिणाम में जगन्य हो रहे हैं, पेज 44 हमने लिख के रखा है वहां पर। पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त निकालना, फिर से मनुष्य गति का जगन्य है, ये मध्यम परिणाम है। औदारिक शरीर तेजस शरीर वो सर्व संकलेश या तत्प्राय के संकलेश में जो उत्कृष्ट बनती है वो यहाँ कैसे बने नेचुरली, वो भी देखो देखो अति संकलेश में जघन्य बन देगी, ये मध्यम परिणाम है। इतना ही सोचो ना कौन सी गति क्या है उसकी बात ही छोड़ दो अभी। अंगोपांग प्रशस्त प्रकृति है ना, हाँ देखो निकालो 44 पेज, ये पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्तकों की मार्गणा 43 से शुरुआत हुई थी उनको बताना, पर वो 44 पर मनुष्य गति का जघन्य करने वाला जीव है। हाँ देखो देखो यहाँ तो उनके लिए मध्यम परिणाम में जघन्य होते पंचेंद्रिय जाति भी, मनुष्य गति का जघन्य करने वाला पंचेंद्रिय, हाँ क्योंकि उसका एक इंद्रिय के साथ जहाँ पंचेंद्रीय जाति और अन्य जाति मध्यम परिणाम में जघन्य होगी, अन्यत्र हम सर्व संकलेश में देखते थे, परंतु औदारिक मिश्र वाला सर्व संकलेश में क्या बांधेगा, तिरियंच गति और एक इंद्रिय जाति और सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, ख्याल में आती बात, इसलिए पंचेंद्रीय जाति का मध्यम परिणाम में होगा। औदारिक अंगोपांग द्विंद्रिय जाति के साथ बंधेगा कि नहीं, द्विंद्रिय जाति का मध्यम परिणाम के साथ वो नहीं बंधेगा, वो तो अनंत गुणा बंधेगा। आप वहां पर भी वो अनंत गुणा बंधेगा, द्विंद्रिय जाति के साथ भी अनंत गुणा बंधेगा। अंगोपांग की में आप बीच में अंगोपांग क्यों लगा निकाल रहे, सबको क्लियर होने दो ना, मगर देखो क्रम से देखो, द्विंद्रिय जाति के साथ भी जघन्य के साथ वो जो मध्यम परिणाम है वहां पर भी अनंत गुणा हो रहा है, तो पंचेंद्रिय जाति के साथ भी अनंत गुणा हो ही जाएगा। अभी क्रम से निकालो, बीच में कोई ऐसा अटपटा निकालते हैं ना तो लोगों को सोचना ही नहीं आता कि क्यों अंगोपांग की बात करें, अब मनुष्य गति के जगन्य की बात हम देख रहे हैं, वो मध्यम परिणाम में जगन्य हो रहा है। अन्यत्र पंचेंद्रिय जाति, जो अपर्याप्त की बात छोड़ो, अवधारिक मिश्र की बात छोड़ो, अन्यत्र पंचेंद्रिय जाति कहाँ बंधेगी, तो अति संक्लेश में। परंतु अवधारिक मिश्र वाला जीव कौन सा है, लब्धि अपर्याप्त या निवृत्ति अपर्याप्त, यहाँ तो नरगति बनती नहीं है। और अवधारिक मिश्र है यानी मनुष्य तीर्यंच है, तो मनुष्य तीर्यंचों में अगर नरगति नहीं बन रही है तो अपर्याप्त जीवों के अति संक्लेश में सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त वाला एक इंद्रिय का बंध हो रहा है ना, पंचेंद्रिय का वहां नहीं होगा। तो पंचेंद्रिय का जहां कहां होगा, मध्यम परिणाम में, जहां लौट लौट कर पंचेंद्रिय अन्य जाति बन सकती वहां पर। इसलिए यहां पर पंचेंद्रिय जाति का भी जघन्य हो सकता है, जहां मनुष्य गति का जघन्य है वहां पंचेंद्रिय जाति का भी जघन्य होगा। तो पंचेंद्रिय जाति मनुष्य गत्यानुगुर्वी त्रस बादर प्रत्येक का नियम से बंद करता है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है, क्योंकि ये जो सब प्रकृति है ना, त्रस चतुष्क सावर चतुष्क, उनका ये जघन्य यहाँ पर होता है। और अजघन्य होगा तो छह स्थान पतित होगा। तो ये हमने मनुष्य गति की बात देख ली, हम एक एक प्रकृति को देख रहे हैं। यहाँ पर 57 पेज पर देखना भी मनुष्य गति की बात, पांच जाति, पांच जाति में एक इंद्रिय जाति का भी मध्यम वही लेना है आपको, पेज नंबर 44 के साथ कंपेयर करना है। 44 निकाला पेज, देखो एक इंद्रिय जाति का जगन्य कर रहा है, वहां तीर्यंच गति पुण्य संस्थान तीर्यंच गत्यानुपूर्वी। अभी वहां तो पंचेंद्रिय अपर्याप्ति, पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त में था, वहां तो तीर्यंच गति का भी जघन्य हो सकता है, परंतु यहाँ पांच जाति है वो मध्यम परिणाम में जघन्य है और तीर्यंच गति सर्व विशुद्धि में जघन्य है। तो यहाँ तीर्यंच एक इंद्रिय जाति के साथ जहां मध्यम परिणाम में जघन्य है, वहां तीर्यंच गति अनंत गुणा बंधेगी। पर बाकी जो हुंड संस्थान स्थावर दुर्भग अनादेय है, वो तो जगन्य भी अजगन्य भी बन देगी। ये डिफरेंस है एक इंद्रिय जाति के साथ, यानी तीर्यंच गति जहां जहां बन रही है वो तो जगन्य नहीं बन देगी यहां पर। ख्याल में आती बात, नहीं समझे? देखो तीर्यंच गति का अपना जगन्य सर्व विशुद्ध अग्नि का एक होता है, मिथ्या दृष्टि है, पहला गुणस्थान वाला है। अब यहां उसके साथ तीर्यंच गति बंधेगी नियम से, एक इंद्रिय जाति का जहां जघन्य है कहां है, मध्यम परिणाम में, वहां तीर्यंच गति कैसी बंधेगी, अनंत गुणा अधिक बंधेगी। यहां तो कहे आए ऐसा प्रकार जानना चाहिए, कहते हैं, परंतु वहां पर पंचेंद्रिय जाति के साथ कुछ अलग बातें होगी। यानी सर्वत्र द्विंद्रिय जाति के लिए तीर्यंच गत्यानुपूर्वी वगैरह लिया ना, गति गत्यानुपूर्वी, वो जघन्य भी और अजघन्य भी लिया था, क्योंकि वो बांधने वाले वहां पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त थे। और औदारिक मिश्र है, हमने अग्नि का एक वायु का एक को भी लेना है। हाँ बंद किया उसने। हाँ देखो देखो यहाँ पांच जाति में क्या डिफरेंस है, इतनी विशेषता है कि ऊपर लिखे रखो। ओ 57 पेज पर ऊपर जहाँ जगह है वहां पर पांच जाति के लिए स्टार करो यहाँ पर, और उसका ऊपर कथन करो विशेषता। पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त, उनसे क्या विशेषता होगी, इतनी विशेषता है कि जैसे एक इंद्रियों में हमने विशेषता देखी थी ना, देखो देखो ऊपर लिखना 57 पर, इतनी विशेषताएं पांच जाति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव। अभी वो नियम से नहीं नियम से वो बात छोड़ो, पंचेंद्रिय के साथ तो दो ही गति बंधेगी, परंतु बाकी चतुर चार जातियों के साथ तो तिरंज गति बंधेगी। तो तिरंज गति बनती है ना, बंद करने वाला जीव तिरंज गति और तिरंज गत्यानुपूर्वी का, हाँ तिरंज गति और तिरंज गत्यानुपूर्वी का अनंत गुना अधिक अनुभाग बंद करेगा। बराबर है ना? ये हमें वो नियम से वगैरह वो बात छोड़ी दी, क्योंकि वहां पर हमने देखा था पंचनी तिरंज पर्याप्तकों में अनुभाग बंद करेगा। ये समझ में आती बात? क्योंकि देखो नहीं समझे, फिर से सुने। मध्यम परिणाम वाला और तिरंज गति का करने वाला वो अग्नि का एक वायु का एक सर्व विशुद्ध। ये सभी के साथ वैसे लगा है, तिरंज गति का तो सबके साथ ना, जिसके जिसके साथ तिरंज गति बनती है। एक मनुष्य गति गत्यानुपूरी छोड़े ना तो बाकी सबके साथ तिरंज गति अनंत गुना अधिक बंधेगी। पांच जाति आदि के लिखो, मनुष्य गति को छोड़कर पांच जाति आदि के आदि लिखो, केवल पांच जाति लिखा ना, पांच जाति आदि के यानी छह संसार छह संसार सबके लिए लागू होगा। ये क्योंकि उधर वो क्या लिखा था, जगन्य भी करता है जगन्य, तिरंज गति और मनुष्य गति को एक साथ रखा था कहां पर, पंचेंद्रिय तिरंज अपर्याप्तकों में। परंतु जब उन्होंने बाद में बात की थी इसी प्रकार करके तो वहां उन्होंने अग्नि का एक वायु का एक की बात अलग से उठाई थी। कि उनमें अलग से जाना करें, क्योंकि तेजस का एक वायु का एक जहां आते हैं वहां कथन थोड़ा अलग हो जाता है। अभी आना अपने 57 पेज पर, मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये जो पूरी लिस्ट हमने पढ़ी 57 पेज पर औदारिक मिश्र कायोगी के सेकंड लाइन में, मनुष्य गति पांच जाति छह संस्थान छह सहनन मनुष्य गत्यानुपूर्वी दो विहाय गति त्रस स्थावर आदि चार युगल सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर आदेय अनादेय, इनकी मुख्यता से सन्निकर्ष जैसे पंचेंद्रिय तिरंज पर्याप्तकों में देखा वैसे यहाँ पर जानना चाहिए। यहाँ तक बात हो गई ना? अभी इनमें से मनुष्य गति के साथ तो पंचेंद्रिय जाति वगैरह तो बंधेगी सब, उसकी बात हमने पढ़ ली। अब पांच जाति हो या छह संस्थान हो, छह सहनन है, विहाय गति है, त्रस स्थावर वगैरह है, ये बाकी सभी प्रकृति है, इनके साथ तिरंज गति भी बन सकती है और पंचेंद्रिय के साथ केवल मनुष्य गति भी बन सकती है। तो जहाँ मनुष्य गति बंधेगी वो जगन्य भी बंधेगी अजगन्य भी बंधेगी, और जहाँ तिर्यंच गति बनती वो अनंत गुना अधिक बंधेगी। यहाँ तक समझ में आई बात? यानी उससे ये डिफरेंस है, इतनी विशेषता है, ये इतनी विशेषता है हमने डाल दी उसमें। केवल पंचेंद्रिय जाति ने उसके जो जो बनती है उस सब के लिए, यानी उस वाक्य के बाद भी डाल सकते थे काक पद करेंगे कहा मनुष्य भी छोड़कर, इसलिए पांच जाति आदि लिखा आगे मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी को छोड़कर। अब देव गति के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जी, आपको ये लेना है कि औदारिक मिश्र में मिथ्या दृष्टि तो इसका बंद करता ही नहीं है और सम्य दृष्टि करता है, तो सम्य दृष्टि करता है तो देवगति के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला वो भी कब लेना है? वो अंतिम समय जो पर्याप्त होने वाला है, वो सर्वसंक्लेश वाला, उसके जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव पंचेंद्रिय जाति तेजस शरीर कार्मन शरीर समचतुर संस्थान। अब देवगति के साथ यही बनते हैं नियम से, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु चतुष्क, प्रशस्त विहाय गति, त्रस चतुष्क। अब वो सर्वसंक्लेश वाला समय दृष्टि है, इसलिए अस्थिर अशुभ और अयशकृत, ये तो तीन अशुभ लेंगे, परंतु नियम से बनने वाली शुभ सुस्वर आदेय लेंगे। और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। अब पंचेंद्रिय जाति तेजस शरीर कार्बन शरीर वो कैसे जघन्य किसके है? तो मिथ्या दृष्टि के, यहाँ वो कैसे होगा? अनंत गुणा अधिक होगा क्योंकि ये सम्य दृष्टि है। सभी ने अप्रशस्त वर्ण चतुष्क और उपघात है वो सर्व विशुद्ध सम्य दृष्टि के होगा, और यहाँ वो सर्व संकलित सम्यक दृष्टि है, इसलिए वो भी यहाँ पर अनंत गुणा हो गया। अस्थिर अशुभ तो सम्य दृष्टि के मध्यम परिणाम में जगन्य होगा सम्य दृष्टि के भी, और यहाँ तो वो सर्व संकलित वाला सम्य दृष्टि है, वो भी अनंत गुणा अधिक हो गया। ये समझ में, अलग अलग प्रकृतियों के लिए उसका रीजनिंग अलग अलग है। वैक्रियक शरीर वैक्रियक अंगोपांग और देवगत्यानुपूर्वी का नियम से बंद करता है। अब देवगति भी प्रशस्त है समय दृष्टि बांध रहा है, ये भी प्रशस्त है समय दृष्टि बांध रहा है, उनका भी स्वामी वही है, तो वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। तीर्थंकर प्रकृति का कदाचित बंद करता है। कौन है ये जीव? देवगति का जगन्य करने वाला जीव। यदि बंद करता है तो जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यही वो है कि सर्वसंक्लेश वाला है, समय दृष्टि है, जो निवृत्ति पर्याप्त अपर्याप्त का अंतिम समय है, तो वहां तीर्थंकर प्रकृति भी जगन्य बंधेगी, जगन्य अजगन्य दोनों। यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार वैक्रियक शरीर आदि चार, यानी वैक्रियक द्विक देवगत्यानुपूरी और तीर्थंकर प्रकृतियों देवगत्यानु देवगति ऊपर बताई, उसका सन्निकर्ष बता चुके, पांचवी लाइन से शुरुआत की थी हमने, तो जैसा देवगति का कथन है ऐसा ही कथन वैक्रियक शरीर के लिए, वैक्रियक अंगोपांग के लिए, देवगत्यानुपूर्वी के लिए और तीर्थंकर प्रकृति के लिए होगा। समझ में आई बात? तो उनका सन्निकर्ष भी ऐसा ही कहेंगे हम, क्योंकि उसका भी स्वामी समय दृष्टि सर्व संकलेश वाला जो है। नेपल सन्नि टोटल पांच है, पर जैसे देवगति का कथन किया है वैसे अन्य चार का भी ऐसा ही कथन होगा, इसलिए वैक्रियक शरीर आदि चार कह दिया, यानी वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, देवगत्यानुपूर्वी और तीर्थंकर। अब औदारिक शरीर और तेजस शरीर आदि तथा औदारिक अंगोपांग, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योत का भंग पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान है। देखो औदारिक शरीर पेज 45 पर था। अब ये कौन सा जीव है औदारिक शरीर का जो जघन्य करने वाला, सर्व संकलेश वाला जो है ना, एक केंद्रीय सूक्ष्म साधन अपर्याप्त का बंद करने वाला है। देखो निकालो 45 पेज। मिला आपको 45 पेज 95 नंबर का पॉइंट, औदारिक शरीर के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव। ये औदारिक मिश्र में मिथ्या दृष्टि सर्व संकलेश वाला, औदारिक मिश्र कहने से मनुष्य तीरें ही होते हैं, वो कौन सा बंद करेंगे? हाँ, तीरें गति के साथ एक केंद्रीय सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त वाला। तो क्या क्या बांधेंगे नियम से? तीरें गति। अब ये तीरें गति का जगन्य सर्व विशुद्ध वाले को था और ये सर्व संकलेश वाला है, ये अनंत गुना। एक केंद्रीय जाति हुंड संस्थान ये सब मध्यम परिणाम में जगन्य थे, यहाँ वो अनंत गुना हो गए। हुंड संस्थान में मध्यम परिणाम, तीरंज गत्यानुपूर्वी अनंत गुणा। उपघात अप्रशस्त वर्ण चतुष्क समय दृष्टि के जघन्य थे, यहाँ वो अनंत गुणा है। स्थावर आदि चार ये भी मध्यम परिणाम में जघन्य है और यहाँ संकलेश है, इसलिए यहाँ अनंत गुणा है। और अस्थिर आदि पांच का ये भी मध्यम परिणाम में जघन्य, यहाँ वो अनंत गुणा। नियम से बंध करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। ये समझ में आई बात? अब तेजस शरीर कारवान शरीर इनका नियम से करेगा, वो जघन्य भी होगा और अजघन्य भी होगा, ऐसा ही इनके बारे में आपस में होगा सन्निकर्ष। तो यह हमने औदारिक शरीर देख लिया। आना अपने पेज पर कौन कौन सी प्रकृतियां 57 में औदारिक शरीर और तेजस शरीर आदि वो देख लिया अभी हमने। फिर औदारिक अंगोपा ये तो औदारिक अंगोपांग का भी यहाँ कहाँ लिखा, 42 में लिखा था हमने। औदारिक अंगोपांग का कहाँ लिखा है? द्विंद्रिय के साथ होगा ना वो, द्विंद्रिय के साथ अनंत गुणा था। हाँ, वहाँ औदारिक अंगोपांग का तो हाँ, क्योंकि द्विदेह जाति का तो मध्यम परिणाम में जघन्य होता है ना, और औदारिक अंगोपांग का जघन्य जो होगा द्विंद्रिय अपर्याप्त का बंध जहाँ होता है। अंगोपांग कहाँ से बंधना शुरू हो जाएगी? द्विंद्रिय अपर्याप्त के साथ बंधेगी, पर वहां द्विंद्रिय अपर्याप्त का उत्कृष्ट होगा, जघन्य नहीं होगा। नहीं नहीं इसमें देख, हाँ स्वामी देखेंगे, परंतु यहाँ अंगोपांग का उन्होंने सन्निकर्ष तो बताया होगा ना। फिर से ना, अंगोपांग का क्यों होगा? द्विंद्रिय जाति अप्रशस्त है, अंगोपांग प्रशस्त है, और अंगोपांग के लिए वो प्रतिपक्षी नहीं है। देखो यहाँ शायद विहाय गति में मिलेगा वो प्रशस्त विहाय गति का बंद करने वाला जीव। वहां पर अंगोपंग अनंत गुणा बनता है। हाँ, ये समचतुर्थ संस्थान नहीं, संप्राप्त त्रिपाठी के साथ वो तो अप्रशस्त प्रकृति, वो सहनन तो मध्यम परिणाम में जगन्य होता है। हमको अंगोपंग मध्यम परिणाम में जगन्य नहीं होगा। कहाँ पर है? जरा 86 में कुछ लिखे रखा है मैंने, 86 पेज नंबर। में क्या लिखा है? जरा 4 नंबर की पुस्तक निकालनी पड़ेगी। औदारिक मिश्र में औदारिक अंगोपांग का जघन्य करने वाला ना, उन्होंने पंचेंद्रिय तिरंज अपर्याप्त तो को कहीं समान बता दिया, परंतु उसमें अंगोपांग कहीं मिलता है क्या? देख लो अभी, और शरीर संस्थान और अंगोपांग मिलेगा। जरा पीछे देख लो, 45 पर शरीर है, उसके बाद संस्थान लिया है, संस्थान के हाँ 42 पर सामान्य तिरंजों के समान लिखा था। पेज नंबर 46 पर हुंडक संस्थान वाला पैराग्राफ है, उसके अंतिम लाइन, हमेशा संस्थान के बाद अंगोपांग की चर्चा आती है। तो 42 पेज मैंने पहले लिख के भी लिखा था ना, आपको बताया भी था। हाँ हाँ, 86 नंबर का पॉइंट है वो, 86 वो पेज नहीं था, पॉइंट नंबर 86 था। देखो 42 पेज पर 86 नंबर का पॉइंट, चौथी लाइन, औदारिक अंगोपांग के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, तिर्यंच गति, द्विंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर, कुंड संस्थान, असंप्राप्त त्रिपाटिका, सहनन, प्रशस्त वर्ण चतुष, अप्रशस्त वर्ण चतुष, तिर्यंज गत्यानुपूर्वी, अगुरु लघु उपघात, त्रस बादर अपर्याप्त नियम से लेना है, प्रत्येक, अस्थिरादि 5, और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। क्योंकि द्विंद्रिय जाति अपर्याप्त का बंध यहाँ हो रहा है जहाँ अंगोपांग बंधना शुरू हुआ है। अपर्याप्त इसलिए दूसर को भी नहीं लिया था, और प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो सब अनंत गुना अधिक बनती है, क्योंकि कुछ तो मध्यम परिणाम में जघन्य बंधने वाली थी और कुछ औदारिक शरीर, तेजस शरीर वगैरह तो संकलेश, सर्व संकलेश में जघन्य थी। वो सभी प्रकृतियां यहाँ अनंत गुना अधिक बनती। यहाँ तो लिख के रखा था मैंने पेज 42 और ब्रैकेट में 86 लिखा था, वो 86 पैराग्राफ का नंबर था, मैंने वहां सामान्य तिरंजों के समान बताया था, पंचेंद्रिय तिरंजों के समान। हाँ, औदारी गंगोपांग का क्योंकि पंचेंद्रिय तिरंज अपर्याप्तकों में ही अंगोपांग का पंचेंद्रिय तिरंजों के समान बता दिया था, इसलिए उसको हमने वहां से देख लिया। अब परघात उच्छ्वास का जघन्य करने वाला, पेज नंबर 57 लाना। अब परघात का और उच्छ्वास का जघन्य करने वाला, तो उसका जघन्य ने अर्लीस्ट परघात कब बनेगा? एक इंद्रिय पर्याप्त के साथ बनेगा, वहां जघन्य होगा, तो उसके साथ एक इंद्रिय जाति बनेगी वगैरह वगैरह। पर वो जो मध्यम परिणाम में बनती है वहां तो अनंत गुना बंधेगी, और जो इसके साथ बंधने वाली तेजस कारवान वगैरह है वो एक इंद्रिय सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त के साथ जगन्य बंधेगी, वो भी यहाँ अनंत गुना बंधेगी। निकालो पेज 46। एकदम नीचे का पैराग्राफ है, परघात के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव अब तीर्य जगति बांधेगा नियम से, क्योंकि एकेंद्रिय का पर्याप्त का बंद कर रहा है, सूक्ष्म साधारण पर्याप्त का बंद करने वाला जीव है ये, तभी अर्लीएस्ट परघात बंधेगा उसको। ख्याल में आते हैं कैसे विचार करना है? अति संकलेश में सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त बन रहा है, परघात का बंद करना है तो हमको पर्याप्त बंद होना चाहिए, तो पर्याप्त तो सूक्ष्म साधारण के साथ भी बंधेगा। हाँ, तो परघात का जघन्य अनुभाग बंद करने वाला जीव तीर्यंच गति, जो यहाँ अनंत गुणा बंधेगी बंधेगी, एक इंद्रिय जाति वो भी यहाँ अनंत गुणा बनती, क्योंकि एक इंद्रिय जाति मध्यम परिणाम में जघन्य थी, तीर्यंच गति सर्व विशुद्ध अग्नि का एक के जघन्य थी, यहाँ दोनों ही अनंत गुणा है। अब औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर वगैरह, इनका जघन्य किसके साथ होता था? सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त के साथ, सर्व संकलेश में, और ये कौन सा जीव है? तत्प्रायोगिक संकलेश है, यहाँ वो अनंत गुना बंधेगी। हुंड संस्थान मध्यम परिणाम में जघन्य, यहाँ अनंत गुना बनती है, प्रशस्त वर्ण चतुष्क औदारिक शरीर के साथ, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क समय दृष्टि के जघन्य होगी औदारिक मिश्र वाले के, यहाँ वो अनंत गुना है। तीरंज गत्यानुपूर्वी गति के समान अगुरु लघु का जघन्य है वो सर्व संकलेश में, उपघात का जघन्य समय दृष्टि को सर्व विशुद्धि में, स्थावर सूक्ष्म पर्याप्त मध्यम परिणाम में जघन्य है और यहाँ वो अनंत गुणा है। साधारण दुर्भग अनादेय अयश कीर्ति और निर्माण का, ये भी सारे मध्यम परिणाम में जघन्य है, यहाँ पर वो नियम से अनंत गुणा अधिक होता है। देखो ये कौन सा वाला हमने बंध का देखा था, परघात का बंद हो रहा है, तो सूक्ष्म साधारण पर्याप्त लिया है ना, ये एक इंद्रिय के साथ सूक्ष्म साधारण पर्याप्त का बंद हो रहा है, तो सूक्ष्म के साथ नियम से अयश कीर्ति बंधेगी, भले वो पर्याप्त भी क्यों न हो। दुर्भोग अनादे तो सभी एक इंद्रिय जाति के साथ बनता ही बनता है, इसलिए सारे नियम से है और अनंत गुणाधिक है। मैं 46 की बात बता रही हूँ आपको, नहीं 42 में तो हमने अंगोपांग देखा, ये लास्ट पैराग्राफ हो गया, अभी 47 पर आ गए हम। अब परघात का बंद करने वाला उच्छ्वास भी नियम से बांधेगा, वो जघन्य भी अजघन्य भी होगा, वो षट्स्थान पतित हो जाएगा। अब जहां परघात का बंद हो रहा है जघन्य, मध्यम तो सिर अस्थिर शुभ अशुभ भी बंधेगा, वो अनंत गुणा अधिक बंधेगा, जैसा परघात का कथन है वैसा ही उच्छ्वास का होगा। तो हमने ये देखा परघात उच्छ्वास, आना पेश 57 पर, आतप और उद्योत का भंग पंचेन्द्रिय तीरंच पर्याप्त को के समान है। आतप और उद्योत को भी देख लेते हैं, 47 पेज पर आतप है। अब देखो हमको कैसे सोचना है, पहले ये नक्की करते हैं आतप का बंध किसके साथ होता है, तो एक इंद्रिय के साथ होता है, पर बादर पर्याप्त के साथ होता है, तो सर्व संकलेश में बादर सूक्ष्म का और पर्याप्त का बंध हो रहा है, तो जहां बादर का बंध शुरू हुआ है और पर्याप्तों का बंध शुरू हुआ है वहां तो संकलेश कम है, तत्प्रायोगिक संकलेश वाला जीव है। तो तत्प्रायोगिक संकलेश के साथ अभी यहाँ जो बंधने वाली प्रकृति है कौन कौन सी, 47 पर देख लेना, तीर्यंच गति ये तो अनंत गुणा बंधेगी बंधेगी। एक केंद्रीय जाति जो मध्यम परिणाम में बनती वो अनंत गुणा बंधेगी। औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, ये तो सर्व संकलेश वाले को जघन्य बनता है, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त के साथ। वो यहाँ पर तत्प्रायोग में अनंत गुणा बंधेगी। हुंडक संस्थान मध्यम परिणाम में जघन्य है, वो अनंत गुणा बंधेगा। प्रशस्त वर्ण चतुष सर्व संकलेश वाले को जघन्य है, यहाँ अनंत गुणा। अप्रशस्त वर्ण चतुष कर उपघात सम्यक दृष्टि को सर्व विशुद्ध वाले को जघन्य, यहाँ वो अनंत गुणा है। अगुरु लघु त्रिक में ऐसा ही समझना और उपघात हमने बता दिया। अब स्थावर, क्योंकि आतप है ना, तो स्थावर तो बंधेगा नियम से, पर वो कैसे बंधेगा? जैसे एक इंद्रिय जाति के साथ बनता है, वो मध्यम परिणाम में जघन्य है, यहाँ वो अनंत गुणा बनते। बादर पर्याप्त प्रत्येक दुर्भग अनादेय और निर्माण का नियम से बंद करता है। देखो यहाँ केवल दुर्भग और अनादेय लिया, जहाँ सूक्ष्म का बंध होता था वहां तो अयशक लिया था, यहाँ अयशक को हम ऑप्शनल में रखेंगे। हाँ, तो ये सब नियम से बंधने वाली है निर्माण तक, जो अनंत गुणा अधिक होती है। अब विकल्प रूप से कौन से कदाचित वाले, सिर अस्थिर, शुभ अशुभ, यश अयश, इनका कदाचित बंध है जो अनंत गुणा है, क्योंकि उनका भी अपना जघन्य में मध्यम परिणाम में जघन्य होता है, यहाँ वो अनंत गुणा होता है तत्प्राज्ञ संकलेश में। उद्योत का ऐसा ही समझना, उद्योत का जघन्य कार्लियस्ट कहाँ होगा? उसका एक इंद्रिय के साथ, बादर एक इंद्रिय पर्याप्त के साथ, उसका भी सन्निकर्ष ऐसा ही होगा। अपना पेज निकालना 57 पर। अप्रशस्त वर्ण के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, अब ये कौन सा है? समय दृष्टि है। हमारी मार्गणा औदारिक मिश्र की चल रही है, तो चौथे गुणस्थान के साथ जो मनुष्य तीरंज में जन्मा है, निवृत्ति पर्याप्त अवस्था के अंतिम समय में है, उसकी विशुद्धि या संकलेश दोनों ही वहां पर ज्यादा होते हैं, तो यहाँ पर हमको विशुद्धि वाला लेना है। तो यहाँ जो देवगति आदि सभी बनती है, देवगति वगैरह कैसे है? वो तो सर्व संकलेश वाले को जघन्य बनती है, और ये तो सर्व विशुद्धि वाला है, इसलिए इसके साथ बन समय दृष्टि है ना, तो एक ही वो देवगति का 28 वाला पैकेज है। तो उसमें से 28 में से केवल वो उपघात को छोड़ दो, तो बाकी अनंत गुणा अधिक होगी। अब इसके वर्ण के अकेला लिया है, तो उसके साथ अप्रशस्त गंध आदि तीन, अने अप्रशस्त गंध रस और स्पर्श और उपघात का नियम से बंद करता है, परंतु उसमें वो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। अब समय दृष्टि है, तो तीर्थंकर प्रकृति का कदाचित बंद करता है, उसका भी जघन्य संकलेश में होगा, और ये अप्रशस्त वर्ण का जघन्य तो विशुद्धि में बंद रहा है, अति विशुद्धि में, तो वह भी कदाचित बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है, यानी अपने जघन्य के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम। स्थिर आदि तीन युगलों का भंग पंचेन्द्रिय तिर्यंच पर्याप्तकों के समान है। देखो मध्यम परिणाम, पण ये समय दृष्टि के भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि के भी हो सकता है, तो मध्यम परिणाम समय दृष्टि देवगति बांधेगा, और मिथ्या दृष्टि है मध्यम परिणाम में मनुष्य गति, तिर्यंच गति कुछ भी बांधेगा। क्या बंधेगा कहा मैंने? अनंत गुणा बंधेगा क्या? मध्यम जघन्य बंधेगा ऐसा नहीं कहा था, ख्याल में ना, हम कौन सी बनती है उसकी बात चल रही थी। देखो इतनी विशेषता है कि यह यानी जो यह औदारिक मिश्र वाला तिर्यंच गति देवगति, देखो तिर्यंच गति कैसे बंधेगी? ये सर्व विशुद्ध वाले को जघन्य, यहाँ वो अनंत गुणा। देवगति कैसे बंधेगी? तो सर्व संकलेश वाले को जघन्य होती है, मध्यम परिणाम में अनंत गुणा। वैसे वैक्रिक शरीर औदारिक अंगोपांग वो तत्प्राग में जघन्य होती है, यहाँ मध्यम परिणाम में अनंत गुणा होगी। वैक्रिक अंगोपांग दो अनुपूर्वी परघात उच्छ्वास आतप उद्योत और तीर्थंकर प्रकृति का कदाचित बंध करता है जो अनंत गुना अधिक होता है, परंतु इसके साथ मनुष्य गति बनती है तो जगन्य भी बंधेगी और अजगन्य भी बंधेगी। सिरादि तीन युगलों के साथ उनके जगन्य है तो जातियां कौन से बंधेगी? हाँ कोई बात बताते, वो भी जगन्य अजगन्य बंधेगी। निकालो पेज नंबर 49। यह निकले मिला 105 नंबर का पॉइंट, नया पैराग्राफ, स्थिर का जगन्य करने वाला। अब स्थिर का जगन्य है तो यहाँ तो युगलों में से एक युगल का एक बता दिया, इनमें पांच युगल ले सकते, पर यहाँ गतियां कौन सी बंधेगी? वो तो पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त था, यानी पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त में लब्धि अपर्याप्त था, तो वहां पर दो गति लिया, पांच जाति, ये सब कैसे हैं? कदाचित बंद करता है और जगन्य भी होगा और अजगन्य भी होगा, उससे यहाँ क्या डिफरेंस है? हाँ यानी वहां दो गति कौन सी ली थी? हाँ क्योंकि वो पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त देवगति को नहीं बांधेगा, वो लब्धि अपर्याप्त जीव लिया था और तीर्यंचों में लब्धि अपर्याप्त को में देवगति नहीं बांधेगी। औदारी के मिश्र में तीन गति में लेनी पड़ेगी, जगन्य कैसा होगा? देवगति का अनंत गुण अभी तो पढ़ा ना, अभी हमने वो लब्धि अपर्याप्त था और ये निवृत्ति अपर्याप्त है। समझ में आई बात? इसलिए यहां विशेषता बताई। एक मिनट, हम कौन से पेज पर थे? 57 पर। हाँ अभी हमने क्या पढ़ा भैया, आपने सुना ही नहीं। पेज नंबर 57 निकालो। नहीं कहा, 58 पर थे ना, 58 पर थे जो हमने पढ़ा था, उसके आगे हम चल रहे। देखो 58 पेज और पहली लाइन, सिरादि तीन युगलों का भंग पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त के समान है, इतनी विशेषता है। इतनी विशेषता ने वहां से यहाँ क्या डिफरेंस है? तो कहते कि यहाँ तो तीन गति बंधेगी, मनुष्य गति जगन्य अजगन्य बंधेगी, वो तो उसके समान हो गए, परंतु यहाँ की विशेषता क्या है? तीर्यंच गति देवगति कदाचित बंधेगी तो अनंत गुना अधिक बंधेगी। ये अभी हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्योंकि तीर्यंच गति अगर औदारिक मिश्र है, तीर्यंच गति का जगन्य अग्नि का एक को होता है और स्थिर का जगन्य मध्यम परिणाम में है, तो तीर्यंच गति यदि बनती है तो अनंत गुना बंधेगी। देवगति भी बन सकती है समय दृष्टि को, स्थिर का भी जगन्य हो रहा है और देवगति भी बन रही है, पर देवगति का अपना जगन्य कहाँ है? सर्व संकलेश समय दृष्टि को, यहाँ वो मध्यम परिणाम में अनंत गुणा बंधेगा। मनुष्य गति भी तो बन सकती है, मनुष्य गति औदारिक मिश्र में कौन बांधेगा? मिथ्या दृष्टि बांधेगा, तो जगन्य अजगन्य दोनों बांधेगा, वो तो पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्त तो कोई समान घटित हो ही गया, उससे क्या डिफरेंस है? उसकी बात हम यहाँ देख रहे हैं। यानी वहां जो दो गति पांच जाति वगैरह लिखा था, वैसे यहां हमको तीन गति पांच जाति लिखना पड़ेगा और उसमें से जो विशेषता उन्होंने बता दी। आगे बढ़े अभी, हाँ। देखो 58 पेज, अभी हमारी औदारिक मिश्र की बात हो गई, अब वैकृत कायोगी की बात चलेगी। वैकृत कायोगी ने पर्याप्त देवनार की है, सात कर्मों का भंग सामान्य देवों के समान है, क्योंकि मोहिनी का भी समझते हैं ना, क्योंकि गुण संचार है, तो मोहिनी में क्या क्या ले सकते हैं, जहां मिथ्यात्व का जघन्य हो रहा है। मिथ्यात्व का जघन्य कब होगा, सम्यक के सन्मुख वाले की होगा, हाँ, वहां अनंतानुबंधी का जघन्य अजघन्य दोनों हो गए, और वहां बंधने वाली अन्य जो प्रकृतियां हैं वो नियम से बंधने वाली, कौन सी, पुरुष वेद, हास्यरति, बैजुगुप्सा, और वो कैसे होगी, अनंत गुणा अधिक बंधेगी, क्योंकि सम्यक दृष्टि के वो जघन्य होगी। बाकी अप्रत्याख्यान जो हमने देवों में देखा ना, अप्रत्याख्यान आवरण का जघन्य कौन करेगा, समय दृष्टि देव करेगा जघन्य, अप्रत्याख्यान आवरण का जघन्य करेगा, तो वहां क्या बंधेगी, पुरुष वेद वगैरह वगैरह और अन्य ग्यारह, वो जघन्य भी और जघन्य भी बंधेगी। तो ये तो हमने जैसे पहले देखा था मोहिनी का, अभी हमको यहाँ देखना है नाम कर्म का। अब वैक्रे काय योगी जब कहते हैं तो तीरें जगती का तो सातवें नरक में ले सकते हैं हम, सर्व विश्व सम्यक तो के सन्मुख वाला, क्योंकि वैक्रे काय योगी है ना, पर्याप्त जीव है। तो तीरें जगति और तीरें गत्यानुपूर्वी का भंग सामान्य नारकियों के समान है, यानी वैक्रे काय योग में जहां तीरें जगति का जघन्य अनुभाग बंद कर रहे हैं, सातवें नरक का नारकी है, हाँ, तो उसमें क्या क्या बंधेगी, नियम से पंचेंद्रिय जाति बंधेगी, तीरंज गति का जगन्य हो रहा है ना, और वो सम्यक तो के सन्मुख वाला है जीव, तो वहां तो बाकी प्रशस्त प्रकृतियां बहुत सारी बंधेगी, तेजस, कर्मण, अवधारिक शरीर, अंगोपांग वगैरह सब बंधेगी, और वो कैसे बंधेगी, अनंत गुणा बंधेगी प्रशस्त प्रकृतियां होने से, जो अति संकलेश में जगन्य बनती है वो यहाँ इसको अनंत गुणा अधिक बंधेगी। इसके साथ जो अप्रशस्त प्रकृतियां बनती है वो भी अनंत गुना बंधेगी, क्योंकि वैक्रिक काय योग में समय दृष्टि के वो जघन्य होगी, यहाँ वो भी अनंत गुना होगी। अब ये कौन सा जीव है, तो यहाँ तो हाँ, पर तीरंज गति का जहां जघन्य है वहां स्थिर आदि छह नियम से बंधेगी, और वो कैसे बंधेगी, हाँ, मध्यम परिणाम में जगह नहीं ना, और ये तो विशुद्ध परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि है। तो जो हमने सामान्य नारकियों में देखा था ना, 29 पेज पर देखा था शायद, 29 पर, लास्ट दो लाइन नीचे से दूसरी लाइन, तीरंज अभी हमने देख लिया, उसको थोड़ा देख लेते, तीरंज गति का जगन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव, अब हमने देखा ना प्रशस्त प्रकृति कौन सी, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर, समय चतुर संस्थान, क्योंकि ये करण लब्धि का अंतिम समय, अभी एक ही यही संस्थान अंगोपांग और सहनन वगैरह सब बंधेगा, उत्कृष्ट सहनन, यहाँ कुछ अप्रशस्त भी लिए जो समय दृष्टि को जगन्य बनती है, ये सारी प्रकृतियां अनंत गुण वृद्धि रूप यहाँ बंधेगी। केवल तीरंज गति के साथ तीरंज गत्यानुपूर्वी जघन्य या अजघन्य बंधेगी, उद्योत का कदाचित बंद होगा तो अनंत गुणा अधिक बंधेगा, यहां तक वो तीरंज गति की बात उन्होंने सामान्य नारकी के समान बता दिया। अब आना अपने पेज नंबर 58 पर, फिर से दोबारा वैक्रिक कायोगी की तीसरी लाइन, दूसरी, अभी तो हमने तीरंज गति की बात पढ़ ली, मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी का भंग सामान्य देवों के समान है, ये मध्यम परिणाम में जघन्य होता है। तो मनुष्य गति बन रही है तो पंचेंद्रिय जाति ही बन रही है, पर पंचेंद्रिय जाति का जघन्य तो सर्वसंकलेश वाले को होता है और यह मध्यम परिणाम है, तो पंचेंद्रिय जाति है, औदारिक शरीर अंगोपांग है, तेजस कारमान है, ये बाकी सभी प्रकृतियां है जो मनुष्य गति वाला पैकेज है, उसमें वो प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो वो कैसे बनेगी, अनंत गुणा अधिक बंधेगी। परंतु केवल जो छह संस्थान है, छह सहनन है, दो विहाय गति है, सिरादि छह है, त्रस बादर पर्याप्त है, प्रत्येक है, वो सब कैसे बंधेगी, जघन्य भी और अजघन्य भी, जो मध्यम परिणाम में जो घने बनती है उस सब की बात है यहाँ पर। त्रस्थावर बांदर नहीं, बांदर प्रत्येक पर्याप्त को नहीं लेना क्योंकि वैक्रिय का योगी है, वैक्रिय का योगी है। बांदर पर्याप्त प्रत्येक का ही बंध हर समय करता रहेगा, सर्व संकलेश भी क्यों नहीं हो उसी का बंध करेगा, इसलिए त्रस और त्रस को लेना यहाँ पर। त्रस को जगन त्रस का हाँ ऊपर के देव और नारकी जो है वो सर्व संकलेश में करेंगे, वो अनंत गुणाधिक होंगे। बरोबर युगल युगल को नहीं लेना है यहाँ पर। देखो किसके साथ लगा रहे, मनुष्य गति के जगन्य के साथ ले रहे हैं। तो 10 युगल नहीं लेना, 6 युगल लेना केवल। देखो जहाँ वैक्रिक कायोग में जिसका जहाँ जगन्य है उसको लेना पड़ेगा। देवों की बात निकालो, अभी हम कहाँ देख रहे थे, पंचीरियंश के बाद देव होगा ना, 47-48 पर कहीं होगा, 50 पर है क्या? देवों में तीरियंश गति तो हो गई, मनुष्य गति की बात देख रहे थे हम। मनुष्य गति का भंग तीरियंश गति के समान है, बाकी के छोड़कर एक इंद्रिय स्थावर उद्योग तातप उद्योग वगैरह छोड़ना है। यानी वो देवों में 7 कर्मों का लिखा है ना, वहां से पढ़ते 50 पेज पर 107 नंबर का पॉइंट। तीरंज गति के जगन्य के बदले हम मनुष्य गति का जगन्य लिखेंगे वहां, यानी सोचेंगे। अब उसमें एक इंद्रिय जाति को छोड़ो, 6 संस्थान, 6 सहनन, 2 विहाय गति। अब सावर को भी छोड़ो, सिरादि 6 युगल का कदाचित बंद करता है ना, और बंद करता है तो जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है। वैकिर का योग है, इसलिए अन्यत्र तो हम मनुष्य गति के साथ पर्याप्त अपर्याप्त देखते, देवों में ये नहीं देख सकते, देव अपर्याप्त का बंद ही नहीं करते। और बाकी पंचेन्द्रिय जाति वगैरह वगैरह जो त्रस वगैरह का तो अनंत गुणा अधिक होगा। वहां तो कदाचित में लिखे थे बाकी, परंतु यहाँ तो नियम से मैं ले देना, पंचनी जाति औदारिक शरीर अंगोपांग वगैरह आतप उद्योत को छोड़ देना। हाँ तो ये हमने देख लिया मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी का। एक इंद्रिय जाति और स्थावर का भंग सामान्य देवों के समान है, इतनी विशेषता है कि देखो देखो वैकिरिक कायोग में जब कहते हैं तो एक इंद्रिय जाति और स्थावर के साथ इतनी विशेषता है कि यह एक इंद्रिय जाति बांधने वाला तो देव है, परंतु तीन जगति का जगन्य वैकिरिक कायोग में तो 7वें नरक का नारकी करेगा। इसलिए यहाँ पर तीरियंज गति और तीरियंज गत्यानुपूर्वी का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणाधिक होता है। क्योंकि सामान्य से देवों में अगर एक इंद्रिय जाति का जगन्य हो रहा है तो वहां तीरियंश गति का भी मध्यम परिणाम में जगन्य हो सकता था। यहाँ पर हमारी मार्गणा तो देव के नारकी को सबको इंक्लूडेड है, यहाँ जो कोई भी तीरियंश गति का जगन्य करेगा उसके साथ कंपेयर करना है। तो जहां एक इंद्रिय जाति का जगन्य हो रहा है वहां तीरियंश गति अनंत गुणा अधिक बन देगी, बाकी भंग तो देवों के समान। पंचेंद्रिय जाति वैकृत आयोगों वाले के दो ही ऑप्शन है, एक इंद्रिय जाति देवों में एक इंद्रिय पंचेंद्रिय, और ऊपर के देव और नारकियों में पंचेंद्रिय जाति ही बंधेगी, वो सर्व संकलेश में बंधेगी जघन्य। इसलिए कहते हैं पंचेंद्रिय जाति औदारिक अंगोपांग और त्रस का भंग सामान्य नारकियों के समान है। क्योंकि वो यही बनते हैं और सर्व प्रशस्त प्रकृतियां होने से सर्व संक्लेश में ये जघन्य बन देगी। अब पंचेंद्रिय जाति का इनका सबका तीनों का जघन्य कर रहे हैं तो तिरंज गति के साथ वो उत्कृष्ट संक्लेश में जघन्य करेंगे, वहां तिरंज गति बंधेगी, वो तिरंज गति अनंत गुना बंधेगी। बाकी इसके साथ तेजस कारमान वगैरह नियम से बंधने वाली वो जघन्य भी बन सकती है, अनंत अजघन्य भी बन सकती। सभी जघन्य बंधेगी और अप्रशस्त प्रकृतियां हैं वो तो अनंत गुना बंधेगी बंधेगी। औदारिक शरीर के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव तिरंज गति, अब ये एकेंद्रीय जाति भी बांध सकता है, पंचेंद्रीय जाति भी बांध सकता है, परंतु औदारिक का जघन्य कर रहा है, सर्व संक्लेश वाला जीव है तो तिरंज गति बांध रहा है। कुंड संस्थान, अप्रशस्त वर्ण चतुष, तिरंज गत्यानुपूर्वी, उपघात और अस्थिर आदि पांच का नियम से बंद करता है जो अनंत गुना अधिक होता है। यहाँ एकेंद्रीय जाति भी बन सकती थी इसलिए दूसवर को छोड़ दिया, नियम से बंधने वाली देखे और वो कैसे बंधेगी तो अनंत गुना अधिक है क्योंकि औदारिक शरीर प्रशस्त है, सर्व संक्लेश में जघन्य है और बाकी सब प्रकृतियां यहाँ अनंत गुना अधिक बन रही है। एकेंद्रीय जाति, अब ये कदाचित में रखेंगे, एकेंद्रीय जाति असंप्राप्त सुरपाटी का सहन है, अप्रशस्त विहाय गति स्थावर और दुष्वर का कदाचित बंद करता है। कुछ प्रकृतियां एकेंद्रीय के साथ बनती है, कुछ पंचेंद्रीय के साथ बनती है, इसलिए कदाचित में रखा जो अनंत गुणा अधिक होता है। ये सब मध्यम परिणाम में जघन्य जो बनने वाली यहाँ पर अनंत गुणा अधिक होती। पंचेंद्रीय जाति, अब औदारिक शरीर के साथ पंचेंद्रीय जाति ये कदाचित में रखेंगे, औदारिक अंगोपांग आतप उद्योत और त्रस का कदाचित बंद करता है। यदि बंद करता है तो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है क्योंकि सर्व संक्लेश अवस्था में ये भी बन सकती है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। ये हम औदारिक शरीर के साथ लगा रहे हैं ना, किसके साथ? हाँ, तेजस शरीर कारवान शरीर प्रशस्त वर्ण चतुष अगुरु लघु त्रिक बादर पर्याप्त प्रत्येक ये सब ध्रुवबंदी है और निर्माण का नियम से बंद करता है किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है क्योंकि सर्व संक्लेश में ये जघन्य बंदेगी। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार तेजस शरीर आदि प्रकृतियों की मुख्यता से परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए, यानी तेजस हो या कारमान है प्रशस्त वर्ण चतुष वगैरह वगैरह सब प्रशस्त प्रकृतियां ध्रुवबंदी है, उनका भी सन्निकर्ष ऐसा ही होगा क्योंकि औदारिक शरीर ये ध्रुवबंदी प्रशस्त प्रकृति है देवों के लिए, देव हो या नारकी हो। किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है, अजघन्य का भी करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार ये हमने पढ़ा था तेजस शरीर आदि प्रकृतियों की मुख्यता से परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए, किंतु इनमें से किसी एक के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव शेष का नियम से बंद करता है किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। शेष प्रकृतियों का भंग सामान्य देवों के समान है। शेष प्रकृतियों ने किसको किसको छोड़ा थे? उन्होंने गतियां बताई, जातियां बताई, शेष ये भी छह संस्थान हो गए जो मध्यम परिणाम में जघन्य बनते हैं, वहां प्रशस्त भी और अप्रशस्त भी अनंत गुणा बनती है। केवल जो बीच में बनने वाली वो हाँ वो जघन्य भी अजघन्य भी बन सकती है। सर्वत्र वो तिरंज गति को अनंत गुणा लेना है, बस इतना है।
इसी प्रकार वैकृत मिश्र कायोगी जीवों के जानना चाहिए, क्योंकि जैसे औदारिक मिश्र में हमने देखा सर्व विशुद्धि वाला या सर्व संकलेश वाला, यहाँ पर भी वो बातें घटित हो जाएगी। अब यही रुकेंगे हम, क्योंकि आगे का पैराग्राफ पढ़ा है ना। चावानी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।